खुदावन खुदा जो सजदे के लायक है, जिसने आपको और मुझको बनाया, उसके जलाली और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, कोई तुमको गुमराह ना करे, कोई तुमको बहकाए ना। शायद आपने पहले इसके बारे में सुना हो, आसमान पर बहुत से सितारे हैं। एक सितारा है, उसको क्या कहते हैं? प्लैनो। वो ऐसा सितारा है जो अपने रास्ते को भूला रहता है, वो आसमान पर घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसे अपनी मंजिल का, अपने मुकाम का कुछ पता नहीं। और जब खुदावंद यसु मसीह ने सख्त तालीम देना शुरू की, तो खुदावंद यसु मसीह पर यहूदी रबियों ने ये इल्जाम लगाया कि ये उस गुमराह सितारे की मानद है, जिसे पता नहीं कि कहां पर जाएगा। और तभी खुदावंद यसु मसीह ने कहा था कि मैं राह जानता हूं, और जो कोई मेरा कलाम सुनता है वो आजाद किया जाएगा। ये यूनानी का लफ्ज है, लेकिन उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, गुमराह, बरगश्ता, भूला हुआ, या अपनी मंजिल से ना वाकिफ। जिसके लिए हम सीख रहे हैं पालूस रसूल के वसीला से, इफिसियों 5 बाब उसकी छठी आयत में, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, धोखा ना दे, गुमराह ना करे, बहकाए ना, ताकि तुम बरगश्ता हो जाओ। हम बहुत सी सच्चाइयां सीख रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि एक और कड़वे सच पर गौर की जाए। दुख होगा, लेकिन पैगंबर से दुख करने की जरूरत नहीं, पैगाम देने वाले के खिलाफ नहीं होना। अगर खिलाफ होना है तो फिर खुदा की मुखालफत में उसके सामने खड़े होना होगा। क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह का नाम लेकर मनादी करना शुरू की, तो रोम के जितने लोग थे, जितने रब्बी, जितने शहंशाह के सब मानने वाले थे, उन्हें पकड़कर इमाल की किताब में जिक्र मिलता है, कहते हैं कि अब ये नाम लेकर मनादी ना करना। और उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि हम इंसान के हुक्म को माने और खुदा के हुक्म को छोड़ दें। तो इसलिए जरा कड़वे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर के कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, मेरी खुदा की तरफ से यही ड्यूटी और यही सच्चाई मुझे सिखाने का हक, कह सकता हूं, जिम्मेदारी मिली है कि आपको उन बातों से वाकिफ करवाया जाए जो बेफायदा है, जिनसे आपकी तरक्की नहीं हो सकती, जिनके आसमान पर हमारा कुछ अजर नहीं है। तो मेरे साथ निकालें मरकस की इंजील, उसका छठा बाप। मरकस की इंजील उसका छठा बाप, उसकी पहली आयत से हम 6 आयत तक पढ़ेंगे और जानेंगे कि बहुत दफा जब खुदा का कलाम होता है तो लोग किस तरह अपने आप को संग दिल कर लेते हैं। ये आज की नहीं बल्कि यीशु मसीह के दौर की भी बात है। यीशु मसीह से पहले भी जब खुदा ने मूसा को भेजा, इब्राहिम को भेजा, एलिया को भेजा, तो कहा कि लोगों से कहना कि अपने दिल को सख्त ना करें। इसलिए मरकस की इंजील उसका छठा बाप, उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। जो बाइबल मुकदस पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, वरना हम सब गौर से सुनेंगे। फिर वहां से निकल कर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो अबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं? और ये हिकमत कहाँ से, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं? क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूस्तस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या इसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं? पस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यसु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता, और वो कोई मौजजा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें अच्छा कर दिया, और उसने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया, और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। पाक कलाम के पढ़े उसमें जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन यीशु मसीह सब्बत के दिन तालीम दे रहा है, उसके हाथ से जीव जीव मौजजात हो रहे हैं और लोग हैरान हैं। जब उन्होंने यीशु मसीह की तालीम को सुना जो इख्तियार के साथ थी, यीशु मसीह की तालीम को सुना कि रब्बी इस तरह तालीम नहीं देते, ये अनोखा सच बयान करता है। इसकी बातों में लुत्फ है, इसकी बातों में सच्चाई है, इसकी बातों में करवाहट है, लेकिन ये खुदा की तरफ से बोलता है। सो लोग हैरान हुए कि ये हिकमत कहाँ से आ गई, और उन्होंने यीशु मसीह को और उसकी बैकग्राउंड को और उसके खानदान को गिनना शुरू किया। यीशु मसीह भड़ाई, यीशु मसीह का पेशा क्या था? भड़ाई का, क्योंकि यीशु मसीह का बाप जिसे जमीनी बाप यूसुफ, उसका काम क्या था? भड़ाई का। और यहां पर क्या लिखा है? क्या ये वही भड़ाई नहीं जो यीशु मसीह के बाप के पेशे की तरफ और यीशु मसीह के पेशे की तरफ भी इशारा करता है? जैसे पालूस रसूल खैमे बनाता था जिसे कहते हैं तंबू, वैसे ही यीशु मसीह के बारे में यहां पर क्या ये वही भड़ाई नहीं? यीशु मसीह जब तक खिदमत के लिए नहीं बुलाया गया, 30 साल के बाद बियाबान में गया और 40 दिन 40 रात तक आजमाया गया, उससे पहले यीशु मसीह एक बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा। यीशु मसीह काम करता रहा, ये नहीं कि वो फारग बैठा रहा और सोचता रहा कि मैं किस तरह किसी को बचाऊं। नहीं, यीशु मसीह ने इसीलिए ये बात कही थी कि क्या कोई मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। यीशु मसीह ने आसमान के तमाम कानूनों को, जमीनी तमाम कानूनों को पूरा किया। तो यीशु मसीह से लोगों को, जिनको हैरानी थी, जो खुश नहीं थे कड़वा कलाम सुन के, वो कहते हैं कि क्या ये भड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और उसके यीशु मसीह के रिश्तेदारों का, यीशु मसीह के भाइयों का और बहनों का जिक्र किया गया है? क्या लिखा है? मरियम का बेटा और यकूब और यूस्तस और यहूदा और शमाउन का भाई है। शायद आप पहले से वाकिफ ना हो, यीशु मसीह के बहन भाई थे जैसे हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि जब यूसुफ की और मरियम कसा मरियम की शादी हुई, उसके बाद यकूब, यूस्तस, यहूदा, शमाउन, ये चार भाई थे जिनमें दो का जिक्र हमें बाइबल मुकदस में बार बार मिलता है। यकूब का खत वो किसने लिखा? यीशु मसीह के भाई ने। यहूदा का खत वो कौन है? यीशु मसीह का बंदा, यीशु मसीह का भाई। और फिर यहां पर लिखा है, और क्या इसकी बहनें यहां हमारे यहाँ नहीं? तो बहुत दफा जब सच बयान किया जाता है तो लोग खानदान के लिस्ट खोल कर बैठ जाते हैं। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 10 साल पीछे चले जाऊं, जब हमने 2003 में टोबा टेक सिंह में प्रोग्राम किया, वहां पर खुदा ने अजीब तरीके से काम किए। संग दिल लोगों ने, जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर, दौलत में और तालीम में समझते थे, जो कुछ वो खुद करते थे, उन्होंने कहा कि ये भी चोर डाकुओं का क्या है? एक गिरोह है। उन सब ने कहा कि ये भी ऐसे ही हैं। और मैंने वहां पर अजीब अजीब काम देखे कि अजीब तरीके से खुदा ने मौजजात किए। जब मौजजात हुए, बीमारों को शिफा मिली और संग दिल बदल गए और लोगों का जहन बदला, तो वहां पर ये आवाज निकली। पहली बात यही थी, ये वही क्षमा आरिफ वाला, बाबे भुट्टे का बेटा, पोडरिया जादूगर, इनका तो दरबार है, इनका तो ये है ये है ये है, वो सारी लिस्ट निकली। और वहां पर वो बात जैसे यसुमसी पर कही जाती थी कि क्या कोई अच्छी चीज नासरत से निकल सकती है, ये बात मुझ पर कही थी कि क्या कोई आरब वाला से, बाबे बूटे के खानदान से, जो खुद बहुत से बुत प्रस्त हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनका खुद दरबार है, वो किस तरह यसुमसी की तालीम दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कबूल नहीं किया, लेकिन जब खुदा ने अजीब मौजजे किए तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने यसुमसी को कबूल किया। बयान करने का मकसद यह है कि यसुमसी कहता है कि यसु ने कहा, नबी अपने वतन, अपने शहर और रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा कहीं और बेइज्जत नहीं किया जाता। लोगों ने वहां पर बेइज्जत करना चाहा, लेकिन खुदावन यसुमसी ने भेजा था वहां पर, उसके नाम को इज्जत मिली, इज्जत मिली। अजीब तरीके से आज भी लोग उन दिनों को याद करते हैं कि उसके अलावा अब तक ऐसे मौजजात खुदा ने नहीं किए, ऐसे अजीब अजीब काम कि लोगों ने जमाने के लिए कहा कि अगर खुदा आपके साथ है तो इस सूरज को कहो कि निकल आए और बारिश ना हो। एक सेकंड में ऐसा हुआ। ये बहुत से मौजजात है जो बहुत दफा मैं बयान नहीं करता, लेकिन यसुमसी कहता है मेरे कामों का बयान करो। फरिश्तगान की चहल पहल घरों में देखी है, वो घर रुपए पैसे से लदा हुआ था, उनके औलाद नहीं थी, और उस बंदे ने यीशु को कबूल किया और उसी साल में उसे खुदावन ने बेटा दिया, और उसने खुद, उसकी बीवी ने फरिश्तगान की चहल पहल अपने घर में देखी। जो किसने किया? यसुमसी ने। जब जब लोग यसुमसी के चेहरे पर उसकी मुखालफत के लिए खड़े होते हैं, वो शर्मिंदा होंगे। कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। ये सच है कि यसुमसी ने कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाएगा, और जिन सचों को हम सीख रहे हैं आपसे मैं बयान करूंगा, इतवार की इबादत में जो मौजूद थे उन्होंने सुना है, वो कड़वा कलाम था, लेकिन याद दहानी के तौर पर फिर कहूंगा। बेशक आप मेरी मुखालफत में खड़े हों, याद रखें मुझे पता है कि जो कोई मेरी मुखालफत में खड़ा होता है, खुदावन खुदा उससे बदला लेता है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं खुदा की मर्जी को पूरा करूं, और आप भी यहां पर यही दुआ करते हैं कि खुदा अपने बंदा के मुंह में अपना कलाम डाल। सो आए चंद एक सच्चाइयों पर गौर करें, चंद एक सच्चाइयों पर गौर करें कि क्या ये हमारे लिए फायदा की है। बहुत सी इंसानी रस्में हैं जो हमने अपनाई हुई हैं, अपनाई हुई है कि नहीं जी, तो क्या हम उससे आजाद होना चाहते हैं या नहीं? या फिर हम पतरस की तरह कहना चाहते हैं, नहीं, खुदा हम बाप दादा से इन रस्मों को मानते आए हुए हैं, हम इसे पूरा करेंगे। बहुत दफा सवाल किया जाता है कि जी जब तक मैं, गौर से सुने, जब तक मैं सलामे मरियम ना पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, क्या बाइबल में कहीं पर लिखा है ये? मैंने कल कहा था आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जब तक मैं इसे ना पढ़ लूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती? कहीं भी नहीं लिखा। आए देखें खुदा के फरिश्ता ने क्या कहा था मुकस्सा मरियम से। लूका की इंजील उसका पहला बाग, उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे, जहां पर गौर से सुने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता तो फिर कहां से ये बात शुरू हुई। अगर हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है? बहुत दफा आपसे पूछूंगा ये सलीब क्यों खाली है, क्यों खाली सलीब लगी है? क्योंकि यसुमसी सलीब पर नहीं, यसुमसी ने निजात के काम को मुकम्मल किया और सलीब से उतरकर कब्र में गया, और कब्र से कहां पर है? आसमान पर। हाँ जी अभी जी, लूका एक बाप उसकी 26वीं आयत से शुरू करेंगे जी। सो यसुमसी कहां पर है? आसमान पर। क्या कर रहा है? किसी को पता है यसुमसी आसमान पर क्या कर रहा है? हमारी शिफायत कर रहा है। क्या कर रहा है? शिफायत, यानी कि हमारे लिए दुआ करता है दिन रात खुदा के दाहिनी तरफ पर हमारे लिए क्या करता है? दुआ करता है। ये बाइबल में है, ये बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 25 से 26 जगहों पर लिखा हुआ है कि वो खुदा की दाहिनी तरफ आसमान पर बैठा आपके लिए और मेरे लिए दिन रात दुआ करता है। तो 26वीं आयत, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। इस दो आयात में फरिश्ता कोई भी गलती नहीं कर रहा, फरिश्ता सब कुछ जानता है कि उसे क्या कहना है और जो कुछ लिखवाना था खुदा ने लिखवाया कि एक शहर जिसका नाम नासरत है एक कवारी के पास जाना, उसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द से जिसका नाम यूसुफ है और उस कवारी का नाम मरियम है। फरिश्ता कुछ भी नहीं बोला। क्या कुछ बोला है फरिश्ता? नहीं। आगे जी, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। लेकिन हम ने क्या बना लिया है आज के दौर में कि जब तक ही मैं सलामे मरियम नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आपको सच बताना चाहता हूँ, मुझे आपसे किसी से किसी भी मिशन से दुश्मनी नहीं, बल्कि जो कुछ बाइबल में है। हमें यहाँ पर पूरी बाइबल में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता कि अगर हम सलामे मरियम पढ़ेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं सलामे मरियम में कि मुकस्सा मरियम हमारे गुनाहों के लिए दुआ कर, ये भी बाइबल मुकद्दस में नहीं है। कौन हमारे गुनाहों को माफ करता है? यीशु मसीह। यूहन्ना नबी ने क्या कहा था? देखो ये वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वहां पर कहा जा सकता था कि यीशु मसीह की मां मरियम गुनाहों का कफारा देगी, नहीं। इसलिए आपकी फायदा की रूहानी तरक्की की बातों को, ये कड़वी हैं, मुझे पता है, मैं भी पढ़ता रहा हूं, मैं भी जानता रहा हूं, मैंने भी सब कुछ किया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मैं बाबे हनुमान की चिराग जलाता था। ये मेरी दादे ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि तुझे हनुमान की प्रस्तुति करनी है क्योंकि वो बलधीर है, वो हिंदू मजहब में क्या है, बहुत ही ताकतवर है, तुझे वैसा बनना है, तुझे वह उसका शागिर्द बनना है। और मैंने किया, लैटरनों पर बैठकर दो दो रुपए पकड़ने और सारे तवीज बनाने, और तवीजों के साथ साथ जो कोई आ जाना आप गोड़ पर फूंक मार के दे देनी और उसका काम हो जाना। ये जब मैंने पादरी साहब से एआरपी चर्च में, उन्होंने कहा कि बेटा तुम बुत परस्त हो, यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई और नहीं, तो मुझे एक झटका लगा, दिल करता था कि अपनी सारी जो बदरूह है जिनका मैं पुजारी हूं पादरी साहब के ऊपर भेज दूं। लेकिन पादरी साहब के साथ किसकी खुदवत थी? खुदा की। खुदा की मुखालफत में कोई भी खड़ा होकर कायम नहीं रह सकता। और जब मैंने सोचा, जब मैंने समझा, तो मैंने यीशु को कबूल किया कि हाँ यीशु मसीह तू ही वाहद है। ये नहीं, यीशु मसीह उसके साथ एक कमरे में, हमारे एक कमरे में, नुक्कड़ में, गोटे वाला दुपट्टा, बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें, और हर मंगल हफ्ता चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। जब ये सारी रस्में हम कर रहे थे, हमारी ताई जी मौजूद है, मेरी अम्मी मौजूद है, राजेश मौजूद है, हमारे खानदान के कितने लोग, 40 साल से ऐसे ही है ताई जी, 40 साल से हम इन रस्मों को करते आ रहे थे। लेकिन जब किसी ने बताया कि नहीं, यीशु मसीह के सिवा निजात नहीं, तो मुश्किल था, दुख हुआ, कैसे हो सकता है? हमारे तो बाप दादा से जब इंडिया से आए थे तब से ये बातें चल रही हैं। इसलिए सच कड़वा है। और गांधी ने, इंडिया का जो लीडर है, उसने ये बात कही थी अपने किसी ना किसी तकरीर तकरीर में कि सच सच है चाहे उसका कोई यकीन करे या ना करे, झूठ झूठ है चाहे उसके सारे सारा जग उसके पीछे बोले। क्या लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उसे कहा कि ऐ मरियम, खौफ ना कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसु रखना। फरिश्तगान पैगाम देने में गलती नहीं करते, हम पैगाम देने में गलती करते हैं। हमसे मुराद तमाम खादम, हम बहुत दफा, मेरा चंदा ना रुक जाए, खानदान ना टूट जाए, दा यकीन ना रुक जाए, किसी को नाराजगी ना हो जाए, आप मेरे मुनसर बने। क्या मेरे लिए खुदा की बात मानना बेहतर है या फिर इंसानों की? आपके लिए खुदा की बात मानना बेहतर है या मेरी? खुदा की। इसलिए मुझ पर यकीन ना करें, मैं आज या कल या हो सकता है इस पैगाम के बाद मर जाऊं। घबरा नहीं, अगर मरूंगा तो यसु मसीह के पास जाऊंगा, दोजख में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारी उम्मीद है यसु मसीह में। जो कोई यसु पर ईमान रखता है, ये फायदा की बात है, वो कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन जो बेफायदा बातें हैं वो क्या है, अगर दा यकीन ना दी तो तुम दोजख में जाओगे, अगर तुमने हदिया ना दिया, इतने इतवार चर्च ना आए, ये दुआ ना की वो दुआ ना की, तो तुम्हें खुदा की हजूरी में मकबूली नहीं मिलेगी। फरिश्ते खुदा के कलाम में किसी किस्म की तरफदारी नहीं करते। हम बहुत दफा खादम, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, हम बहुत दफा अपना अपने आप को दूसरों में कबूल करवाने के लिए अपना रंग बदलते हैं। इसलिए किसी पर नहीं, मैं अपने आप पर बात कर रहा हूं कि बहुत दफा हम ऐसा करते हैं, बहुत दफा। इसलिए खुदावंद खुदा ने मुझसे कहा है, सच बोल, किसी की तरफदारी ना कर, क्योंकि कोई तेरी जगह खड़ा नहीं होगा, तू ही मेरे हजूर खड़ा होगा, तुझे जवाब देना होगा। आपके लिए मैं नहीं जवाब दूंगा। जवाब किस बात का? निजात की नहीं बात हो रही। इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि आप कभी दोजख में जाएंगे, हरगिज नहीं। अगर आपने यसु मसीह को कबूल किया है, सिर्फ यही बात कही है, यसु मसीह तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं तेरी हूं, तू मेरा है, आपकी निजात पक्की है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। बात हो रही है अजर की, कि आसमानी बादशाही में हमारा जान तो फिर डारा होगा, डारा जिन्हों कहते हैं, पठिया वाला, पराली वाला, जिद च एक तंबू का वास, या फिर खुदा की हजूरी में बहुत खूबसूरत अमारत जो के बेशकीमती पत्थरों से बनी होगी। इसका हम नुकसान उठाएंगे और किसी बात का नहीं उठाएंगे। क्या लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये यीशु मसीह के बारे में फरिश्ते ने सिर्फ खुश करने के लिए मुकस्सा मरियम को यह पैगाम नहीं दिया था, ये सच है कि वो दाऊद के घराने पर बैठेगा, दाऊद के घराने पर बादशाही करेगा, यकूब यानी कि इसराइल के खानदान पर अब तक बादशाह रहेगा। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फरिश्ते ने फिर मरियम को तसल्ली देने के लिए, हौसला देने के लिए कहा, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना है। खुदा हमारे दिलों को बहुत जानता है, जब हम यकीन नहीं करते तो खुदा हमें तरह तरह से कहता है, नहीं ये भी सबूत है, ये भी सबूत है, मेरी मानो, मेरी ना सुने खुदा की सुनो। अगर आप इंसानों को खुश करना चाहते हैं तो हम सब कर सकते हैं। खुदा हमें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वो हमें सच बताएगा। अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो खुदा इसके लिए उस मुसरफ बेटे के बाप की तरह बैठा देखता रहता है। जैसे हम गीत गाते हैं, लगियां उड़ीकां तेरियां बदला दे वाले, वैसे ही वो इंतजार में है कि हम उससे कहें कि खुदावन हमारी रहनुमाई कर। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपने बाप दादा की रस्मों को छोड़कर मसीह का खादम बनूं। इसलिए कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और यही बात मैंने अपनी जिंदगी में पाई है। या फिर मैं मसीह का हूं या फिर मैं दुनिया का। इसलिए जो बातें बाइबल मुकद्दस में हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। जो हम इंसानों ने शुरू की हैं और उनको अपना रस्म और रिवाज बना लिया है कि ये करेंगे तो दुआ खत्म होगी, ये करेंगे तो इबादत कबूल होगी। मुझे अमेरिका के 14 सूबों में फिरने का मौका मिला है। वहां पर मुझे किसी ने नहीं ये कहा, और हो सकता है कि आने वाले साल में यरूशलम जाने का भी मौका मिले, ताकि उन जगहों को देखा जाए, उस कब्र को देखा जाए जहां पर यीशु मसीह को रखा था और आज भी वो खाली है। उसको ही कलवरी को देखने का मौका मिले जहां पर यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया गया था। सो आए हम अपनी जिंदगियों को जांचें, पड़ताल करें। जैसे जब कोई चीज खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए हम कपड़ों को, सदूकों को, हर एक चीज को ऊंचा नीचा कर देते हैं। अपनी रूहों की जांच करें। आए हम सब सब खुदा खुदा के हजूर अपने दिलों पर गौर करेंगे।